आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास टेंथ के साइंस का फोर्थ चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था इन O2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है O2 मॉलिक्यूल, सबसे पहले उसके अंदर हमने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था। तो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो मैंने आपको बोला है कि जब आप लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना हो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता करना है उस एलिमेंट का। जैसे कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। उसके बाद हम जब एटॉमिक नंबर पता कर लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उस एलिमेंट का। तो हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता कर लिया विच इज 8। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप लोगों को पता है कैसे लिखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बांटना शुरू कर देते हैं इंटू के एल एम एन शेल्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले के शेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, हमारे पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम एल शेल में डाल देंगे। जैसे ही आपने एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स डाले तो आपको ये दिखने लगा कि हमारे ऑक्सीजन के एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। किस बात के लिए कमी है, उसको चाहिए कि वो अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे, यानी कि अपना ऑक्टेट वो पूरा करे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं। तो अब ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था करनी है ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाए। तो वैसे तो ऑक्सीजन जो है इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स भी ये बना लेता है। लेकिन हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, और जब ऑक्सीजन कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा होता है तो उसमें वो किस तरीके से एक्ट करता है। तो यहाँ क्या करता है, ऑक्सीजन आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स का कम्प्लीटली दान किया जाता है, ना ही कहीं से इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, कम्प्लीटली गेन किए जाते हैं। यहाँ पर शेयरिंग होती है। उसमें क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली किसी को दे दिए गए हैं, ना किसी से परमानेंटली लिए गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उनका 2 एटम्स के साथ या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स के साथ मिलकर के शेयरिंग वहाँ पर हो रही है उन सभी एटम्स के बीच में, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एक कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है वो हम देख रहे हैं। तो क्या करता है ऑक्सीजन, हम उसको देखते हैं किस तरीके से वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, हम ऑक्सीजन का सिंबल लिखते हैं और उसके चारों ओर उतने इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं क्रॉस या डॉट के फॉर्म में जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं। जैसे कि 6 हैं हमारे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो हम ऑक्सीजन के चारों ओर या तो 6 क्रॉस लगा देंगे या फिर 6 डॉट लगा देंगे। उसके बाद एक और ऑक्सीजन एटम का सिंबल बनाएंगे और उसके चारों ओर भी 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं हमें, तो वो डॉट या क्रॉस के फॉर्म में हम बना देंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात याद रखने के लिए कहा था, वो ये कहा था कि जब आप लोग सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितने की कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन दी एटम्स। जैसे यहाँ जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके बीच में 2 बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की कमी है इसलिए बनेगा। और ये जो बात है ये सिर्फ तब अप्लाई होगी जब सिमिलर एटम होंगे, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ कोई और एटम नहीं होना चाहिए किसी और एलिमेंट का, जैसे नाइट्रोजन या हाइड्रोजन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसमें अलग तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से अपने ही ऑक्सीजन के एटम से शेयर करता है ताकि उसका खुद का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें उतने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसमें कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के बारे में बात की जाए तो जो कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दैट डजंट मीन कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के एक 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहली बात, 3 बॉन्ड ही बनते हैं किसी भी 2 एटम्स के बीच में। मैक्सिमम बाय मैक्सिमम आप 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, मोर देन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। किसी 2 एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो मोर देन ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं बनता है। ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम बॉन्ड है, जो कि नाइट्रोजन के अंदर बन रहा था वो हमने सीखा था। कार्बन के भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है और उसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसको बोलते हैं इथाइन, लेकिन इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने एक बात बोली है आप लोगों को कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन जाते हैं, ये मैं आप लोगों को एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको इस तरीके से मत अप्लाई करना कि कहीं पर भी आप लोग बॉन्ड बनाना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल सी सी के बीच में आप इस तरीके से बॉन्ड नहीं बनाते, 4 बॉन्ड्स आप कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं बनाते। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमारे पास सिलिकन नाम का एक आटम होता है, सिलिकन के पास भी क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रॉब्लम होता है, 4 उसको चाहिए होते हैं, तो वो भी शेयरिंग करता है, तो वो इस तरीके से शेयरिंग नहीं करेगा कि 2 सिलिकन एटम्स के बीच में उसने 4 बॉन्ड्स बना लिए। वो कोई और तरीका अपनाएगा अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन के केस में किस तरीके से होता है। ऑक्सीजन के केस में उतने बॉन्ड्स बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है। अभी एक और टर्म यहाँ पर समझो, वैलेंसी। वैलेंसी एक टर्म है जिसके बारे में आप लोगों को उसका रिपीटेशन दिखेगा। जब आप लोग अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको वैलेंसी वर्ड बार बार दिखेगा। तो वैलेंसी का क्या मीनिंग होता है? वैलेंसी का मीनिंग होता है बेसिकली एक एलिमेंट के एटम के अंदर उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है या कितना उसके पास ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम होता है, सोडियम एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है? 2, 8, 1 ऐसे होती है। तो बाहर वाला उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक होता है, सिंगल होता है, तो हम सोडियम को मोनोवेलेंट एटम कहते हैं। मोनो का मीनिंग है 1, और जो सोडियम है उसकी 1 इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है, उसको उसका दान करना है, तो सोडियम के केस में हम कहेंगे कि सोडियम इज अ मोनोवेलेंट एटम। सो बेसिकली वैलेंसी किसी हमारे एलिमेंट के एटम की कितनी होती है। तो अगर तो आपका एलिमेंट ऐसा है जिसके सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 से कम हैं, तो उस केस में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं आप वही उसकी वैलेंसी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम हाइड्रोजन को मोनोवेलेंट एलिमेंट कहते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 से कम है, इसलिए हम कार्बन को टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा का मीनिंग है 4, और बिकॉज 4 इज लेस देन 5 तो आप लोग कार्बन को भी कैसे बोलेंगे, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में आप वही उसकी वैलेंसी बताएंगे और कहेंगे कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। ये तो बात हुई उन एलिमेंट्स की जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरे एलिमेंट्स, तो अब अगर हम उन एलिमेंट्स के बारे में बात करें जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके केस में किस तरीके से हम उनकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के सबसे बाहर वाले शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर सकता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उसको कमी है उसको पूरा करने के लिए या तो वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स 3, या फिर वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में, या फिर वो क्या कर सकता है, अपने जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका इस्तेमाल भी कर सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में। तो बेसिकली होता क्या है वैलेंसी, वैलेंसी होता है किसी भी एक एलिमेंट के एटम की बॉन्डिंग बनाने की क्षमता मैक्सिमम कितनी है वो होती है उसकी वैलेंसी। तो नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम तो सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर सकता है, तो हम नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट भी कह सकते हैं और ट्रायवेलेंट भी कह सकते हैं। ट्रायवेलेंट तब कहेंगे जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कर रहा हो बॉन्डिंग में, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको पेंटावेलेंट कहेंगे। तो हम जब वैलेंसी किसी एटम की चेक करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम की, तो उस वक्त हम बस ये देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बॉन्डिंग बनाने की दूसरे एटम्स के साथ या खुद के साथ, तो मैक्सिमम देखना होता है। इसीलिए आप लोग नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है उसकी वैलेंसी 3 कहेंगे या फिर मैक्सिमम 5 कहेंगे। ये तो नाइट्रोजन के बारे में बात हुई। नाइट्रोजन के सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की उसको कमी है, या कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मैक्सिमम 5 की उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन 5 वो कभी यूज नहीं कर पाता, बिकॉज नाइट्रोजन का एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में, तो 5 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके वो बॉन्डिंग कर नहीं पाता है, ये बात है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि थियोरेटिकली कहने के लिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 5 या फिर 3 है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी की अगर बात की जाए तो ऐसा नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं मिला है अब तक जिसमें नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड्स बनाए हो, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो साइज की वजह से उसका ये जो सपना है 5 बॉन्ड बनाने का वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बता रही थी, क्योंकि ये वर्ड यहाँ यूज हो रहा है कि हाइड्रोजन की 1 है वैलेंसी, कार्बन की 4 है वैलेंसी, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही हो ये वर्ड समझने में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया कि वैलेंसी क्या होती है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट की, उस एलिमेंट के एटम की बॉन्डिंग करने की क्षमता, मैक्सिमम बॉन्डिंग करने की क्षमता कितनी है वही उसकी वैलेंसी होती है, और उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। अगर 1 है वैलेंसी तो उस वक्त हम उसको मोनोवेलेंट कहेंगे, अगर 2 है वैलेंसी तो उसे डाईवेलेंट कहेंगे, 3 है वैलेंसी तो ट्राईवेलेंट कहेंगे, 4 है वैलेंसी तो उसको टेट्रावेलेंट कहेंगे, और 4 से ज्यादा वैलेंसी देखी नहीं जाती है। जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन लोगों में आप लोगों को इससे ज्यादा वैलेंसी दिखेगी नहीं, मतलब कि इससे ज्यादा बॉन्ड्स बनते नहीं है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स मैक्सिमम बनाते नहीं है जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ देयर साइज, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स, नाम मैं आपको बता रही हूँ, नाम आप याद रख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बोरोन भी है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये 4 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ देयर साइज, इनकी साइज छोटी है होती है इस कारण से। तो वैलेंसी आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो हम रिविजन कर रहे थे उसमें देख लेते हैं ऑक्सीजन का कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम पास में आते हैं, उनके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको वो अपने आसपास चारों ओर लगा देते हैं और देखते हैं कि उनको कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है। एक एटम चेक करेगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, चेक कर लिया ऑक्सीजन ने कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अब वो दूसरे एटम से कहता है, दूसरे ऑक्सीजन के एटम से कहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी यही कहता है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख देते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और दूसरे ऑक्सीजन के एटम को पहले वाले ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम की तरफ से शेयर करते हैं। तो टोटल ये क्या करते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो 4 हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो भी 2 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है 1 सिंगल बॉन्ड, और 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा कहें कि 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि उनकी जो शेयरिंग हो रही है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो ये तो ऑक्सीजन के बारे में हमने बात करी थी। नाइट्रोजन के बारे में भी हमने ऐसी ही बात की थी कि नाइट्रोजन जो होते हैं उनमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है N2 मॉलिक्यूल के अंदर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है या फिर 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यही हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, और आज मैंने आप लोगों को वैलेंसी भी बता दिया। अब वैलेंसी हमेशा आपको चेक करनी होती है। तो अगर हम यहाँ पर आज की क्लास में बात करें अमोनिया के बारे में, अमोनिया का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं एक नाइट्रोजन के साथ में अमोनिया बनाने के लिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप लोग इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अमोनिया में कैसे हुआ है ये दिखा सकते हैं, जैसे आप लोगों ने फिगर 4.4 में दिखाया या फिर फिगर 4.3 में दिखाया जो कि पेज नंबर 60 पर है, तो इसी के जैसा कि आप लोग अमोनिया के केस में दिखा सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बिल्कुल दिखाओगे। आप क्या करोगे, आप N लिखोगे सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए, उसमें आपने चेक करना है फिर से कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, वो आपने देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 की कमी है, तो वो क्या कर सकता है, वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो वो खुद के साथ भी बना सकता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम केवल अपने साथ ही, केवल खुद के एटम्स के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के बॉन्ड बनाया है। आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 की उसके पास कमी है और 1 को वो शेयर कर सकता है, तो मैक्सिमम बॉन्ड्स वो कितने बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके, अपने खुद के एक इलेक्ट्रॉन का जो कि आउटर मोस्ट शेल में है उसके, उसका इस्तेमाल करके वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वो अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाने की क्षमता रखता है, 1, और नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाने की क्षमता रखता है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे 5 उसके पास ऑलरेडी हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज करता है और क्या करता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में 3 बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बनाता है, ताकि उसको जो हाइड्रोजन है उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, एक एक हाइड्रोजन से, क्योंकि इसने 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है, तो उसको बेसिकली जब शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों को मिलते हैं, ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, क्योंकि वो अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम, और 3 हाइड्रोजन एटम मिल करके 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझो, नाइट्रोजन तो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन तो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलके एक एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन जो है उसको तो अपना डुप्लेट पूरा करना है, उसे तो ऑक्टेट पूरा करना नहीं है, तो वो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेसिटी ही है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, इसीलिए नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, क्योंकि नाइट्रोजन को तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है नाइट्रोजन के साथ, और जब शेयरिंग होती है तो उसमें क्या होता है, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी हो जाती हैं, सच एज नाइट्रोजन की इच्छा है उसका अपना ऑक्टेट पूरा करने की, हाइड्रोजन की इच्छा है अपना डुप्लेट पूरा करने की, तो दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप नाइट्रोजन का सिंबल बनाएंगे और उसके चारों ओर आप लोग उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस या डॉट से दिखा दोगे। ऐसा करना, आप जब N लिखना तो उसको इस तरीके से अरेंज करना कि एक डॉट नाइट्रोजन के हेड पे हो, बिल्कुल टॉप पे हो, एक लेफ्ट में हो, एक राइट में हो, इलेक्ट्रॉन या डॉट जो आप लोग दिखा रहे हो, क्रॉस से दिखा रहे हो, डॉट से दिखा रहे हो, जैसे भी दिखा रहे हो, तो आप कैसे दिखाओगे, नाइट्रोजन का सिंपल बनाओगे, कैपिटल N बनाओगे और नाइट्रोजन के हेड पे, टॉप पे एक डॉट लगाना, उसके लेफ्ट में एक डॉट लगाना, राइट में एक डॉट लगाना, बेस पे उसके नीचे वाले हिस्से पे 2 डॉट्स इकट्ठे लगा देना। अब जो 3 डॉट्स सिंगल सिंगल हैं इनकी हम बॉन्डिंग कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 3 साइड में लिखेंगे, एक नाइट्रोजन के सबसे ऊपर, एक नाइट्रोजन के लेफ्ट में और एक नाइट्रोजन के राइट में, और हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा क्रॉस या डॉट के फॉर्म में। अब जब सर्कल बनाओगे तो हाइड्रोजन को क्या करोगे, हाइड्रोजन को वो 2 शेयर जो हो रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो हाइड्रोजन को सर्कल करते हुए उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसा गोला बनाओगे, दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी ऐसे ही गोला बनाओगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हों वो हाइड्रोजन को कवर करते हुए बने, और तीसरे हाइड्रोजन के साथ भी गोला ऐसे बनाओगे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वो हाइड्रोजन को कवर करते हुए सर्कल बने। और जब नाइट्रोजन का गोला बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे कि जितने भी वो शेयर कर रहा है, तीन हाइड्रोजन के साथ में वो शेयर कर रहा है, तो 2+2+2 कितने शेयर कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है, खुद के 3 शेयर कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के शेयरिंग में मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जब नाइट्रोजन का सर्कल बनेगा तो उसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कवर होंगे, 3 हाइड्रोजन के जो कंट्रीब्यूशन वाले आ रहे हैं वो भी, उसके खुद के 3 जो उसने कंट्रीब्यूट करे हैं शेयरिंग में वो भी, और 2 जो उसने कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं शेयरिंग में वो भी कवर होंगे नाइट्रोजन के साथ में। तो बड़ा सर्कल बनेगा जिसके अंदर बॉन्डिंग के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो नाइट्रोजन की तरफ से यूज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए हैं अपनी तरफ से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने कहीं यूज नहीं किए हैं बॉन्डिंग में, उसने ऐसे ही संभाल करके रखे हुए हैं। और 1 हाइड्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 1 हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और इसीलिए नाइट्रोजन की तो 3 की कमी थी इसलिए उसने 3 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया शेयरिंग कराने के लिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब उसके पास कैसे हो गया, देखो उसके खुद के 5 तो थे ही, 3 उसने 3 हाइड्रोजन के एटम से शेयर करके खुद के पास रख लिए जिससे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसीलिए उसने जब शेयरिंग की तो उसका डुप्लेट पूरा हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा, आपने ये देखा कि नाइट्रोजन जो है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं जब अमोनिया बनाता है वो, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स 3 बनते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है लेकिन वो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि अमोनिया के अंदर किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि 3 सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन अमोनिया विथ हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हम लोगों ने अमोनिया के बारे में बात कर ली। अब एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है मीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है CH4, यानी कि 1 कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम ने बॉन्डिंग की है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन मैक्सिमम बाय मैक्सिमम एक ही सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए कार्बन जो है उसकी कमी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की है और वो मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, कार्बन क्योंकि उसको 4 की कमी है तो वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। कैसे बनाओगे आप लोग CH4 का मॉलिक्यूल, जो आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे कार्बन का सिंबल विच इज सी, कैपिटल सी, और कार्बन के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो आप लोग 4 डॉट्स बनाएंगे कार्बन के चारों ओर, और वो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे कि 1 कार्बन के ऊपर, 1 कार्बन के नीचे, 1 कार्बन के लेफ्ट में और 1 कार्बन के राइट में, इस तरीके से आपने डॉट्स या क्रॉस बना देने हैं। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, तो उसे 4 बॉन्ड बनाने हैं ताकि उसको 4 दूसरे के एटम से शेयर करके भी मिल जाए और उसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या मोटिव है, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन तो केवल अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। तो इसीलिए अगर 1 हाइड्रोजन एटम के बारे में बात की जाए, CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर 1 हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर बात की जाए तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में ये चल रहा है कि मैं तो कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाऊंगा अपनी तरफ से, और 4 ऐसे हाइड्रोजन एटम है तो चारों के मन में यही बात चल रही है कि मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं CH4 का फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाया गया फिगर 4.5 पेज नंबर 61। इसमें देखो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया गया, कार्बन का सिंबल बनाया है, उसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसकी वैलेंसी भी है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, तो इसलिए कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए गए हैं। टेट्रावेलेंट का मीनिंग क्या है, टेट्रा का मतलब होता है 4, और कार्बन को टेट्रावेलेंट कहने का क्या मीनिंग है, कार्बन को टेट्रावेलेंट कहने का मीनिंग यह है कि कार्बन मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है लेकिन वो 4 बॉन्ड्स इकट्ठे नहीं होंगे, वो चारों जो होंगे वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में होंगे, या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन में होंगे, लेकिन 4 इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा था नाइट्रोजन के केस में, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना था ना नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में N2 मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। लेकिन जो कार्बन CH4 के अंदर बन रहा है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और सिंगल हाइड्रोजन के बीच में, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है कार्बन के अंदर किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि चार सिंगल बॉन्ड बने हैं, लेकिन नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल के अंदर N और N के बीच में आप क्या कहेंगे कि एक ट्रिपल बॉन्ड बना है। ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके का होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है जब इकट्ठे तीन बॉन्ड बन जाए तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ कि किस तरीके से बनता है, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती क्योंकि वो हायर क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी नॉर्मली बात ये समझ लो कि अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो अगर इकट्ठे बन जाते हैं कहीं पर बॉन्ड दो एटम्स के बीच में, तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड बनता है O2 मॉलिक्यूल के केस में, और N2 मॉलिक्यूल के केस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन CH4 के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो नहीं बनते, सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और एक और बात कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मोर देन थ्री बॉन्ड्स किसी दो एटम्स के बीच में बन जाएं। जैसे अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भी है तो उसके अंदर मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बन सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा, जैसे आप कहें कि क्वाड्रपल बॉन्ड क्यों नहीं बनता, चार बॉन्ड्स दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में क्यों नहीं बनते, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, प्रकृति में देखा ही नहीं गया, और वो साइज की लिमिटेशन की वजह से होता है। अभी तक क्या है कि साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि उनको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला हो कार्बन का जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्वाड्रपल यानी कि चार बॉन्ड इकट्ठे बन गए हों। तो इसीलिए जो बॉन्ड है ये काफी अनस्टेबल बना देता है, क्योंकि आपको पता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ताकि हमारे जो एलिमेंट है उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, वो शांत हो जाए, उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए चाहे डुप्लेट पूरा हो जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि ऑक्टेट पूरा करना है या डुप्लेट पूरा करना है, बेसिकली स्टेबिलिटी की भी बात होती है। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें कार्बन और कार्बन होंगे और उनके बीच में चार बॉन्ड्स बन जाएंगे तो वो काफी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल साइंटिस्ट ने ऐसी कोई बात कही नहीं है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में चार बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी के बारे में, सिर्फ बात होती है लेकिन बन के दिख रहा है ऐसा मॉलिक्यूल उन्हें मिल गया हो ऐसा नहीं मिला है अभी तक। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बता रही थी अंतर, कि अगर कहीं पर बोला जाए कि तीन बॉन्ड्स बने हैं लेकिन वो इकट्ठे होंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएंगे, और अगर अलग अलग बनेंगे तो वो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होंगे लेकिन तीन होंगे। जैसे कार्बन में चार बॉन्ड्स तो बने हैं, CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चार बॉन्ड्स तो बने हैं लेकिन वो चारों सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है। तो कार्बन के अंदर चार सिंगल बॉन्ड्स बने हैं CH4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ में। तो इसको आपको रीड करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि सिंगल बॉन्ड बना है कि डबल बॉन्ड बना है कि ट्रिपल बॉन्ड बना है। जब आप सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ही बॉन्ड बनता है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4 के अंदर देखो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के सिर्फ उस बारे में बात करो कि एक हाइड्रोजन को क्या लग रहा होगा, उसको तो यही लग रहा होगा कि उसी ने अकेले ने कार्बन के साथ में बॉन्ड कराया। दूसरा हाइड्रोजन को भी सेम फीलिंग आ रही होगी कि उसने भी अकेले ने ही बॉन्ड किया है। तीसरे को भी यही आ रही होगी कि उसने भी अकेले ने बॉन्ड किया है। तो अकेला जब बॉन्ड करेगा तो सिंगल बॉन्ड ही करेगा, और हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ही वन होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड्स ही बनाता है। लेकिन जब दो एटम्स के बीच में मोर देन वन बॉन्ड्स बन जाए, जिन्हें मल्टीपल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, तो वो अलग होते हैं, वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कहीं पर ये पूछा जाए कोई मॉलिक्यूल दे करके कि इसमें सिंगल बॉन्ड बना है या डबल बॉन्ड बना है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वहां पर दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, उसी आधार पर आप बताएंगे कि वो किस तरीके का मॉलिक्यूल है, उसमें डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है या सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। तो CH4 मॉलिक्यूल जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स ही बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है CH4 में या फिर किसी भी कंपाउंड में, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से होता है, उसकी उसकी खासियत क्या होती है ये समझो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना। फिगर 4.5 में जो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन एक CH4 मॉलिक्यूल दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग करता है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के केस में देखा था कि उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो दो चार्जेस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने में काफी एनर्जी लगती है। तो उसमें अगर एक एग्जांपल लें NaCl का, तो NaCl के बीच में खुद के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना है, वही NaCl दूसरे NaCl के साथ भी बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, लेकिन एक CH4 दूसरे CH4 के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से CH4 अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। देखो क्या होता है, CH4 जो आप लोगों को कंपाउंड दिखाया गया, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही CH4 हमें मिलेगा। जब हम लोगों को प्रकृति में मिलता है तो मीथेन बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, तो मीथेन जो होती है बेसिकली गैस होती है, जो बायोगैस में भी होती है, जो चीज़ें सड़ती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें सड़ती हैं, जैसे केले का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, इन सबको क्या करते हैं, गाय के गोबर के साथ मिक्स कर देते हैं और उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है, या फिर जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं अगर ये सड़ रही हैं प्रकृति में भी तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, और यही ये मीथेन गैस है CH4, तो ये तो गैशियस फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पर गैशियस फॉर्म में वो क्यों है, क्योंकि जब आप लोग किसी कंपाउंड को प्रकृति में प्राप्त करते हैं तो आप लोगों को एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड नहीं मिलता है, जैसे CH4 एक सिंगली कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो दूसरे CH4 के साथ ग्रुप में मिलता है, और वो जब ग्रुप में होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं उसी से पता चलता है उनका स्वभाव कैसा है। तो जब मीथेन बहुत सारे मीथेन एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो गैस के रूप में होते हैं, तो हल्के होते हैं, तो जाहिर सी बात है गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली बहुत लो होता है। अब दूसरी बात, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि उसमें चार्ज का फॉर्मेशन होता है तो इसीलिए वो कंडक्टिंग होते हैं अपने मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में, या फिर सोल्यूशन में, जब पानी में घुले हुए होते हैं तो उनका आयन्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसीलिए दे आर कंडक्टिंग। लेकिन यहाँ पर जो कोवेलेंट हमारे कंपाउंड्स हैं ये तो कंडक्टिंग हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स वाई दे आर जनरली वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट का आप लोगों को पता ही है, ग्रेफाइट जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होने के बावजूद भी इट इज कंडक्टिंग एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम लोग को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन अलग अलग रूपों में प्रकृति में प्राप्त होता है और यही इसके अलग अलग रूप एलोट्रोप्स कहलाते हैं। नाम दे दिया गया है कार्बन के अलग अलग रूपों को, जैसे कि कार्बन जो होता है वो डायमंड के रूप में भी मिलता है, ग्रेफाइट के रूप में भी मिलता है, और एक फुलरीन नाम के कंपाउंड के रूप में भी मिलता है। तो ये जो अलग अलग रूप हैं ये कार्बन के एलोट्रोप्स कहलाते हैं। अब जो कार्बन के खुद के कंपाउंड्स है, डायमंड इतना हार्ड होता है, आप लोगों को पता है डायमंड प्राकृतिक रूप से कोई मटेरियल जो हार्डेस्ट मटेरियल हो तो वो डायमंड ही होगा। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट इज स्लिपरी, उसको जब आप लोग हाथ में छुएंगे तो ग्रीसी ग्रीसी तेल तेल जैसा लगता है। तो एक कार्बन का कंपाउंड तो इतना हार्ड है, दूसरा इतना चिपकू चिपकू सा कैसे, इतना सॉफ्ट कैसे? तो वो इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। जो डायमंड में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है, साथ में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल चीजें आप लोगों को पता है, ऐसी चीजें जिनको थ्री डायमेंशंस में देखा जा सके, जो आपका पेपर होता है उसे आप एक प्लेन के रूप में देख सकते हैं तो वो टू डायमेंशनल कहलाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे कि पेड़, सेब, सब्जी, ये सभी चीजें हम दो डायमेंशन में नहीं देख सकते, उन्हें हम एक पेपर पर नहीं देख सकते क्योंकि उनका एक तीसरा भाग भी होता है। जैसे मान लो कि अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स को रखो, ज्योमेट्री बॉक्स को आप सामने से देख सकते हो और उसके लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हो, उसका एक बैक साइड भी तो रह गया, तो इसीलिए उसके थ्री डायमेंशंस है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं जो तीन डायमेंशंस में होती हैं मौजूद, उन्हें थ्री डायमेंशनल कहा जाता है। तो कार्बन जो होता है हमारे डायमंड के अंदर में वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो थ्री डायमेंशनल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन अपने आसपास के चार कार्बनों से इस तरीके से जुड़ा होता है कि जो बॉन्ड बनता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। और जब भी थ्री डायमेंशनल बॉन्ड बने, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसीलिए जो हमारा डायमंड होता है, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ। ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि ग्रेफाइट एक प्लेनर बॉन्ड बनाता है, और उस प्लेन में, जैसे आप पेपर की बात करो, तो इस तरीके से बनाता है बॉन्ड कि एक कार्बन अपने आसपास के तीन कार्बनों से एक प्लेन में जुड़ा होता है। प्लेन मतलब कि टू डायमेंशनल होता है। जब ग्रेफाइट के अंदर में एक प्लेन में कार्बन अपने आसपास के तीन कार्बन से जुड़ा होता है तो वो टू डायमेंशनल बॉन्ड होता है। और इसी तरीके से ग्रेफाइट में लेयर्स बनती हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स बनती जाती हैं, और हर एक जो लेयर है वो प्लेनर होता है क्योंकि वो सिर्फ टू डायमेंशनल है। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, चार बॉन्डिंग कर सकता है वो। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में आपने बात की कि एक लेयर के अंदर कार्बन ने सिर्फ तीन बॉन्ड्स बनाए हैं बाकी दूसरे जो कार्बन के एटम्स हैं उनके साथ में। तो एक लेयर में एक कार्बन ने तीन कार्बन के एटम्स के साथ में तीन बॉन्ड्स तो बना दिए। अब चौथा बॉन्ड जो बनता है वो दो लेयर्स के बीच में बनता है, और इस तरीके से बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता फिरता रहता है, जिसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के घूमते फिरते रहने की वजह से ही हमारा जो ग्रेफाइट है, इट इज कंडक्टिंग इन नेचर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रीजन है कि जो ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रोप होने के बावजूद भी कंडक्टर क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता फिरता रहता है, मोबाइल होता है, यानी कि घूमता फिरता रहता है। और इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल्स बिजली कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई जो ग्रेफाइट है ये ऐसा कंपाउंड है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लास्ट एलोट्रोप की बात करें कार्बन की, तो विच इज फुलरीन। फुलरीन क्या होता है, सॉकर बॉल के जैसा इसका दिखने में अपीयरेंस होता है। फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा कभी किस तरीके से होता है, फुटबॉल भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से फुलरीन दिखने में होती है। सबसे पहली बार ये वाला एलोट्रोप, फुलरीन एलोट्रोप जो ढूंढा गया था कार्बन का, ये ढूंढा था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है बकमिंस्टर फुलर। तो इन्हीं के नाम पे रख लिया गया था फुलरीन का नाम। फुलरीन के अंदर C60 होता है, यानी कि कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक फुलरीन बनाते हैं एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 60 तो होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो ढूंढा गया था वो C60 ही ढूंढा गया था, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, कंपाउंड का नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये जो फुलरीन ढूंढा गया था, कार्बन 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, फुटबॉल बड़ा भी हो सकता है साइज में, लेकिन जो मिनिमम ढूंढा गया था, सबसे पहला ढूंढा गया था, वो C60 ढूंढा गया था, और इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया था उस व्यक्ति के नाम पे जिसने सबसे पहली बार इसको खोजा था। अब यहाँ पर एक और बात है कि हम लोग ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं, या फिर दूसरे प्योर कार्बन्स का इस्तेमाल करके हम लोग डायमंड बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर कार्बन का कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा और उसको हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव उस पर लगाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ेगा। ऐसा करने से कार्बन जो होंगे वो बहुत पास पास में आ जाएंगे और डायमंड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वहां पर आप लोगों को छोटे छोटे डायमंड्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल डायमंड के जैसे ही दिखने में होते हैं, बस एक ही अंतर होता है कि स्मॉल साइज इनका होता है, और क्योंकि इन्हें इंसानों ने बनाया है अपना दिमाग लगा करके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड्स। और अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है, तो आपकी जो पेंसिल की नोक होती है उसमें ग्रेफाइट मौजूद होता है, और किसी किसी सेल में भी होता है जो हम लोगों के यूज होते हैं खिलौनों में या फिर अलार्म क्लॉक में, तो सेल के अंदर भी ग्रेफाइट मौजूद होता है। तो यहाँ पर इतना आप लोगों को समझ में आ गया, अब बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।